نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب سورت الرعد آیت 28 کا حصہ ہے کہ جان لو کہ ساتھ اللہ ہی کی یاد کے دلوں کو سکون ملتا ہے. اسی طرح سورت توبہ کی آیت 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادہا ومساکن تردونہا احب الیکم من اللہ ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی اور تمہارے شوہر یا بیویاں اور تمہارے قبیلے اور کنبے اور وہ مال جن کو تم نے کمایا اور وہ تجارتیں جن کے مان پڑنے کا تم کو ڈر ہے اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو اگر زیادہ پیارے ہیں تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے اور بے شک اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. ان دو آیات کو اگر ہم ساتھ لیں تو آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے سکون قلب. آج ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کو پرسکون زندگی ملے. صبح و شام لوگ اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, وسائل جمع کرتے ہیں, جس کو آپ کہیے کہ سامان آسائش تو جمع ہو جاتے ہیں لیکن آسائش پھر نہیں ملتی. کیا وجہ ہے کہ آج انسانیت کو سکون نہیں؟ ہر انسان نے زندگی کو پرسکون بنانے کا ایک اپنا معیار رکھا. ہر ایک نے مختلف چیزوں کو سکون کی چیز سمجھا. کچھ نے سوچا کہ اچھا گھر ہوگا تو سکون ملے گا, کچھ نے سوچا مال دولت پیسے روپے. یعنی ہمارا تھاٹ پیٹرن رونگ ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ سکون ملے گا جب ہمارے پاس ہمارے خیال کے مطابق یہ اور ہوگا تو سکون ملے گا اور پھر میری زندگی بڑی راحت بھری ہوگی. پھر انسان ان اسباب اور وسائل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے, مرد بھی اور عورتیں بھی. سب کی اپنی اپنی کوششیں ہیں, سب بھاگ رہے ہیں, لیکن ایسے لگتا ہے کہ سکون ایک پرندہ تھا جو انسان سے اڑ کے جا چکا. آج اگر آپ دیکھیں تو ہر انسان پریشان ہے. ہر انسان کی زندگی کو اگر کھنگالا جائے تو ایسے لگتا ہے پریشانیوں کا گھر, مسائل کا گھر. ہر شخص کی زندگی کا کم و بیش یہی حال دکھتا ہے. جب وہ دوسروں کے سامنے اپنی کہانی رکھتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہے. ایک کی پریشانی دوسرے سے بڑی ہوئی دکھتی ہے. اور پھر بیٹھ کے جو دو لوگ اپنے دکھوں کا درماں چاہ رہے ہوتے ہیں یا ہم درد بن کے یا دو دوستیں بیٹھ کے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتی ہیں وہ بھی درست نہیں ہوتا. یہ ہو گیا تو سکون ملے گا, یہ ہوگا تو سکون ملے گا. چھوٹی سی مثال سے سمجھیے. ایک چھوٹا بچہ ہو, وہ کہتا ہے مجھے سکون نہیں ہے. کیوں؟ ابھی تو میرا بچپن ہے, امی ڈانٹتی ہیں, ابو بھی ڈانٹتے ہیں, بڑے بھائی بھی روب جماتے ہیں, بس ذرا جوان ہو جاؤں دیکھنا میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. وہ سوچتا ہے کہ جوانی کے آتے ہی میری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور سکون کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا. لیکن پھر کیا ہوا, وہ جوان ہو گیا. اب اسی جوان سے پوچھئے, بھائی اب تم سناؤ, تم کیوں پریشان ہو؟ تمہارا بچپن تو اب رخصت ہوا, ابو کی ڈانٹ گئی, امی کی ڈانٹ گئی, بھائی کا روب ختم. تو وہ کہتا ہے نہیں, اصل میں میں اس لیے پریشان ہوں نا کہ میرے پاس زندگی کو کوئی ساتھی نہیں ہے, میں اکیلا ہوں. بس شادی ہونے دو, بیوی مل جائے, شوہر مل جائے, پھر دیکھنا میری زندگی میں کتنا سکون ہے. اللہ اللہ کرتا ہے, شادی بھی ہو جاتی ہے, بیوی شوہر دونوں میں جس کو جو چاہیے مل گیا. اب یہ شادی شدہ جوڑا بھی پریشان ہے. اب ان سے پوچھتے ہیں, بھائی آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہتے ہیں, بھائی کیا بتائیں, بس کیا کریں, شادی کو دو چار سال گزر گئے ہیں, اولاد نہیں ہے نا, بس بچہ مل جائے پھر دیکھیے ہماری خوشیوں کا آغاز ہوگا. چلیے سال دو سال بعد ملے, اب سنائیے, کہتے ہیں جی ہاں ماشاء اللہ اللہ نے اولاد دے دی, تو پھر اب تو آپ بہت خوش ہیں. نہیں ابھی بھی پریشان ہوں. بھائی کیا پریشانی ہے, تنگ بہت کرتا ہے, گود کا بچہ ہے نا, اس کو اٹھا اٹھا کے پھرنا پڑتا ہے, ذرا سا بڑا ہو جائے, سکول جائے گا نا, سب ٹھیک ہو جائے گا. स्कूल जाने का कायल हो गया, अब क्यों परेशान है आप? वो नालायक है, याद नहीं करता। और बस दफा बच्चे के प्रेप सेमेस्टर को या बच्चे की मॉन्टेसरी क्लास को माए मास्टर्स की क्लास समझ के उनकी पढ़ाई पे परेशान है। देखो इसका हफ्जा ठीक नहीं है, इसकी रिपोर्ट खराब आई, पढ़ता नहीं, सोचता नहीं, ये है वो है। अब क्या होगा? बस मेरा बच्चा पढ़ जाए, देखना ये बच्चे का कैरियर बन गया ना तो मेरी जिंदगी के दिन बदल जाएंगे। चलो खैर, मेहनत की, कुछ दुआएं की, किया, अब बच्चा लायक हो गया। अब सुनाइए जी, बेटा तो लायक हो गया, डिग्रियां भी बहुत हैं, अब क्यों परेशान है? वो समय इतना पढ़ा लिखा, इतना पैसा लगाया, बच्चे को अब जॉब ही नहीं मिल रही। दुआ करें बस जॉब मिल जाए, फिर सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। चलिए कुछ अरसे बाद फिर मिलिए। आप सुनाइए जी, जॉब तो मिल गई माशाल्लाह, लाखों रुपए कमा रहा है, अब क्या हुआ? वो असल में अब देखो ना, उम्र भी तो 25 से ऊपर इसकी होने लगी, अच्छा रिश्ता ही नहीं मिल रहा। सोचती हूँ इस बच्चे की शादी कर दूँ, कोई बहू घर में आ जाए, बहू आएगी तो सुकून आएगा। चलो जी, अल्लाह अल्लाह किया, चांद सी बहू भी घर में आ गई, अब क्या सुकून फिर भी नहीं है। क्यों? कि बहू के आई घर में और ही मसले शुरू हो गए। क्यों? कि वो बहू अच्छी नहीं मिली, कल मेरी सास अच्छी नहीं थी, आज मेरी बहू अच्छी नहीं। आप इस कहानी को जिधर तक लेते जाएं, आपको सब बातों का एक जवाब मिलेगा कि आज हर शख्स सुकून की तलाश में है। क्या मेरी इतनी बात से आप इत्तेफाक करते हैं? सोचिए, इस वक्त आप एक कुरान के तालिबे इल्म बन के ना सोचें, स्टाफ का हिस्सा ना समझें, अपने आप को वॉलंटियर ना समझें, ये सोचें कि इन सारी चीज़ों को मैं एक साइड पे कर दूं। क्योंकि जब हमें दीन के नाम पे कुछ मसाइल आते हैं, पढ़ना पढ़ाना, याद करना, आना जाना पड़ता है, तो हम कहते हैं सारे मसलों की वजह ये कोर्स है। देखो ना, जब से कोर्स शुरू किया घर में लड़ाई शुरू हो गई, दिस दिस दिस, खुदा ना खास्ता इस कोर्स को छोड़ के तो देखिए कैसे बेड़ों के छज्जे की तरह मुश्किलात और मुसीबतें हमारे पास आती हैं। तो इतनी बात प्रूव हो गई कि इस दुनिया में इंसान अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल में रहने के बावजूद भी सुकून नहीं पाता, क्योंकि दुनिया की चीज़ों में सुकून है ही नहीं, ये आखरत की चीज़ है। लोग दुनिया में ढूंढते हैं, असल में ये आखरत में ढूंढना है। लोगों ने सुकून दौलत में तलाश किया, लेकिन सुकून दौलत में नहीं है। सुकून तलाश किया बड़े घर के अंदर, यहाँ ये है ही नहीं। सुकून तलाश करता है इंसान बड़े ओहदों पे और मनसब पे, वो इसमें नहीं है। अच्छे स्टेटस में ढूंढा तो मिला नहीं, ऊंची सोसाइटी के अंदर बड़ा सा घर बनाया नहीं मिला, शक्लो सूरत को सजाते रहे संवारते रहे नहीं मिला। फिर कहा चलो शायद सुकून मिलेगा तो नशे में मिलेगा, शराब में मिलेगा, गानों में मिलेगा, फिल्मों में मिलेगा, और गुनाहों की दलदल में जा के डूब के देख लिया, सुकून नहीं मिला, बेहयाई में नहीं मिला, फहाशी में नहीं मिला। जहाँ इंसान गया उसको समझ आया कि परेशानियाँ पहले से बढ़ी, एक ख़त नहीं होती कि दूसरी आ जाती है, और एक ही लफ्ज़ है परेशान परेशान परेशान। तो आइए ज़रा हम सब मिल के इन परेशानियों की वजह ढूंढें। असल वजह यह है कि एक तो ये कि हमने अभी तक परेशानी और मुसीबत को समझा ही नहीं, हमें वजह ही नहीं समझ आई, अपनी बीमारी नहीं पता लगी, हमें चाहिए क्या, हमारे दिल को क्या चाहिए। और दूसरी वजह क्या है कि जो दवा हमने ढूंढी वो दवा इसकी नहीं थी। ये तो ऐसे ही है कि दवा नज़ले की खाते रहें, था बुखार, जो इलाज करना था वो तुमने सोचा ही नहीं। बीमार होना ये मुसीबत नहीं, कद छोटा होना ये मुसीबत नहीं, कमज़ोर होना मुसीबत नहीं है, फ़कीर होना भी परेशानी नहीं, अच्छा घर होना भी परेशानी नहीं, बल्कि ये सब हालात हैं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये लोगों के बीच में हम हालात को, दिनों को पलटते रहते हैं। असल मसला ही नहीं समझे तो इलाज कैसे ठीक करते? बस अब हमने ये सोचा कि हम अपने हालात को बदल सकते हैं, हमारे इख्तियार में, लेकिन जाके देख लिया नहीं बदला। बीमारियां आ गईं, हम नहीं चाहते थे आए, लेकिन करना पड़ा बर्दाश्त, खिलाफे मिजाज चीज़ों को बर्दाश्त किया, ये सब कुछ होगा। मैं और आप इस दुनिया में रहते हुए बीमारियों, परेशानियों, तकलीफ़ों, खिलाफे मिजाज चीज़ों से बच नहीं सकते, बचना हमारे इख्तियार में नहीं है। हाँ, इसको हम ढूंढ सकते हैं कि ये क्यों आती है, क्या वजह है कि मुझ पर ये मुश्किल आई। क्योंकि परेशानी तो नाम है ना दिल में इस परेशानी को महसूस करने का। तो असल बात यह है कि हमें सबसे पहले नंबर एक خود پر آنے والی پریشانیوں کی وجہ نہیں معلوم ہوئی. اب وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کو بھی سمجھیے گا. آپ اس سوال میں لکھیں, آج کی پوری ٹاک آپ کو اصل میں ایک خود احتسابی بھی لگے گی کہ میرے اوپر کوئی بھی پریشانی آئی اس کا سبب کیا تھا. مثلاً آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ہیں نا انسان کی آسائش کے لیے ہوتی ہیں, ضرورت ہے. مثلاً گاڑی, گاڑی کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ ہم واک نہ کریں زیادہ اور ہم اپنی جگہ پہ پہنچ سکیں. اسی طرح گھر کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ہم رہیں, ہمیں کسی کا منہ نہ دیکھنا پڑے. اولاد کیوں ہے؟ تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنے خواب شیئر کریں اور تنہائی وہ ہماری بانٹے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اسباب ہیں, یہ سامان راحت نہیں ہیں, اسباب راحت ہیں. ان سب سے اگر انسان کو سکون مل بھی جائے نا تو وہ سکون نہیں ہے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اسباب راحت اور چیز ہوتے ہیں اور راحت اور چیز ہے. تو لہٰذا آج لوگوں نے لگژریس لائف ڈھونڈی, لگژری نہیں ملی. دوسری وجہ, ہم پہ جو مشکلات آتی ہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ کہ یہ تمہارے یا تو کسی گناہ کا کفار ہے یا تمہارے درجوں کی بلندی ہے. وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم. میرے اوپر کیسے آتی ہے میں کیسے چیک کروں؟ اپنے اوپر آئے تو اس کو آزمائش سمجھیں, دوسرے پہ آئے تو اس کے درجوں کی بلندی کا ذریعہ سمجھیں. کریں کیا پھر جب مشکلات آئیں؟ تو کریں کیا, مصیبتوں میں پریشان نہ ہو. چونکہ دنیا کے حالات میرے اختیار میں نہیں ہیں, میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کو روک نہیں سکتی, تو میں کیا کروں؟ نمبر ایک, پریشان نہ ہوں, اللہ کی تقدیر سمجھ کے قبول کریں. سورۃ یونس آیت 62 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یاد رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں نہ تو ان پر کوئی ڈر ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. کیا مطلب؟ اللہ کے دوستوں پر بیماری نہیں آتی؟ کیا ان کی اولاد کو کچھ تکلیف نہیں آتی؟ کیا زندگی میں سارے حالات ان کی مرضی کے ہوتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کو سمجھتے ہیں کہ جب تکلیف آئے کیسے پتہ چلے کہ آپ اللہ سے جڑی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ وہ یہ ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نیک بندوں پر اس دنیا میں آزمائشیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ آتی ہیں. پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ نیک لوگوں کے دل کی دنیا ایسی ہوتی ہے کہ ان کے اوپر مختلف حالات تو پیش ہوتے ہیں لیکن ان کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, بیماریاں نہیں لگ جاتی. یہ اس تکلیف کو نیگیٹو نہیں لیتے, پازیٹیولی لیتے ہیں. رائٹ, ہوتا کیا اس سے کہ وہ اس تکلیف کا اچھا پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں. آپ دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے. جس کو اللہ سے محبت ہے نا اس کو اللہ کی طرف سے دی گئی تکلیف, بیماری, پریشانی پہ بھی محبت آئے گی. کسی سے پیار ہو, اس کے لیے کام کریں, جسم تھک جائے چل چل کے ٹانگے جواب دیں, انتظار کرتے کرتے آنکھیں درد کرنے لگیں, پوچھا جائے سناؤ بھی کیسا لگ رہا ہے, کہیں گے بہت مزہ آ رہا ہے, انتظار کر رہے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی رہنا بندے کے دل کو سکون دیتا ہے. کریں کیا, دل کی دنیا کو اللہ کی محبت سے آباد کریں. اگر دل کی دنیا ٹھیک ہو گئی نا اور اس میں اللہ کی محبت کا غلبہ آ گیا تو پھر ایمان والا کہتا ہے کہ چلو کیا ہوا, اللہ نے مجھے یاد تو کیا تکلیف سے صحیح. یہ بھی تو اللہ سے ملاقات کا ایک بہانہ ہے نا, اللہ دیکھتا ہے کہ میں اس تکلیف میں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہوں. چلو کوئی بات نہیں نا, سب کے ساتھ ہوتے ہیں, شکر ہے میرے پر اس سے زیادہ بھی آ سکتے تھے جو نہیں آئے. وہ ان سارے گزرتے ہوئے حالات کا اثر اپنے دل پر نہیں لے گا, بے چین نہیں ہوگا, دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ ڈپریشن نہیں ہوگا. وہ زندگی کے اندر کبھی ڈپریشن کا مریض نہیں بنے گا. یہ تو آپ اپنے لیے لکھ لیں ابھی سے. آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق کی دلیل کیا ہے؟ بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی آپ کا دل پریشان نہیں ہوگا. تو پھر آپ پوچھیں گے اچھا جی ڈپریشن کا شکار کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ سے تعلق ٹوٹ چکا ہوتا ہے, جو اللہ کے بارے میں اچھے گمان ہی نہیں رکھتے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور ایک اور وجہ ہوتی ہے ڈپریشن کی, نافرمانی کے دھبے. हर गुनाह दिल पर बोझ बनता है, अंधेरा छा जाता है। ये छोटी छोटी नाफरमानियों के धब्बे इतने ज़्यादा होते हैं, दिल कमज़ोर हो जाता है। नतीजा क्या होता है कि छोटे छोटे हालात का मुकाबला भी दिल नहीं कर सकता, ताकत ही नहीं रहती। ज़रा सी मुश्किल आई, डिप्रेस। इसकी ज़िंदगी के सारे कामकाज ख़त्म, टूट फूट, नहुसत, सुस्तियों का मारा हुआ इंसान छोटी छोटी बातों को लेके कहता है मेरे से ज़्यादा तो कोई बुराई नहीं है, और इसकी ज़िंदगी मफलूज हो जाती है, किसी काम का नहीं रहता, परेशानियों में घिरा रहता है। इसके बरक्स अल्लाह की मोहब्बत से दिल को ताकत मिलती है। जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है ना, और अल्लाह की खशियत होती है, उसके दिल को ताकत मिलती है। जैसे हम बचपन में ताकत वाले सिरप पिया करते थे, बड़ा रिवाज था उस दौर में बच्चों को सिरप पिलाने का। मुझे आज भी एक दवाई की बोतल याद आ रही है, चकोर कलर की होती थी, बड़ी सी ब्राउन, यकीन करें उसका जायका आज भी हलक में है। टॉनिक कहते थे उसको, और हमारे वालिद ने ज़बरदस्ती पिलाना, पियो इसको, सर्दियों में पिलाते थे ठंड ना लगे, क्योंकि उस दौर में इस तरह की फैंसी खुराकें भी नहीं थी और लोग इन्हीं चीज़ों से ताकत लेते थे। इसी तरह एक मुझे याद है बड़ी सी गोली होती थी, ऑरेंज कलर की, विटामिन की गोली कहते थे उसको, विटामिन सी। तो बच्चों के लिए तो हर चीज़ ही फन होता है ना, तो पानी का ग्लास लेके वो गोली जब उसमें डालते थे ना, तो थोड़ी देर में वो डिज़ोल्व होना शुरू होती थी, बबल्स बनते थे, तो हल्का सा उसमें ऑरेंज का टेस्ट होता था, तो बड़े शौक से पीते थे। बस यही समझ लें कि जिस तरह ताकत के सिरप पीते हैं ना लोग, अल्लाह की मोहब्बत दिल का सिरप है, दिल का टॉनिक है। इतनी ताकत पैदा हो जाती है दिल में कि पहाड़ों जैसे हालात भी आसानी से बर्दाश्त हो जाते हैं। अंदर एनर्जी है ना, कच्चा पक्का फॉर्म लेते हैं तो थोड़े से दिनों के इस्तेमाल से बद दबता है, अच्छी किस्म का फॉर्म लेंगे ना तो जितना बोझ डालेंगे उसके बाद फिर सीधा। तो मोमिन का दिल मजबूत होता है, मुश्किल हालात को सह जाता है। तो फिर हम क्या करें, चाहते हैं कि पुरसकून ज़िंदगी मिले। आप अपने सारे गमों को एक जगह लिखें और पूछें कि मैं अपनी ज़िंदगी को पुरसकून कैसे बनाऊं। तो सबसे पहले तो उसकी टिप क्या है कि आप राहत भरी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं ना, तो इसका रास्ता असबाब नहीं है, मीन्स नहीं है, वसाइल नहीं है, दुनिया नहीं है। नरम गद्दा ले आऊँ तो नींद अच्छी आएगी, घूमने वाला पंखा ले आऊँ तो नींद आएगी, नहीं, दुनिया की सब चीज़ों से अपना रुख फेरिए और इसलाह करें तो दिल की करें। पुरसकून ज़िंदगी का राज दिल की इसलाह है। जिसने अपने दिल की इसलाह की, उसके हाल की इसलाह खुद ब खुद होगी, उसके हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। ये बहाने जो हम सोचते हैं कि मैं दीन का काम कर रही हूँ ना इसलिए मेरे शौहर मुझसे नाराज़ रहते हैं, ये मैं कोर्स कर रही हूँ ना, कोर्स कर रही हूँ ना इस वजह से मेरे ऊपर मुश्किल आ रही हैं और मेरे ख़ानदान का प्रेशर है, नहीं, असल बात है कि आपको अपने दिल की इसलाह करनी है। बड़ी से बड़ी तकलीफ़ों में दिल बेचैन नहीं होगा, औलाद बीमार होगी दिल बेचैन नहीं होगा, जॉब छूट जाएगी मियाँ की दिल तंग नहीं होगा, कारोबारी हालात ऊपर नीचे जाएंगे दिल बेचैन नहीं होगा, लोग आपको कड़वी कुसैली बातें सुनाएंगे आपका दिल बेचैन नहीं होगा, सास ताने देगी आप ना खुश नहीं होंगे, बहू नाफरमानी करेगी नहीं सुनेंगे, हर मौके पे आपका दिल कह रहा होगा कि अल्लाह ये हालात इनकी तरफ से नहीं है बल्कि तेरी तरफ से हैं, इनकी क्या ज़रूरत थी कि मुझे दुख दें, तू हकीम है, तू अलीम है, तूने ज़रूर इन हालात में मेरे लिए कोई खैर की बात रखी हुई है, कोई भलाई छुपी हुई है जिसका मुझे आज इल्म नहीं हो रहा। मुझे तुझसे मोहब्बत है और मैं तेरी तरफ से भेजे हुए हर हाल पर राजी हूँ। इससे फिर दिल की दुनिया में सुकून आता है। ये है पुरसकून ज़िंदगी का राज। आने वाले दुखों तकलीफ़ों से बंदा घबराता नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। खूब सुन लो कि अल्लाह की याद से दिलों को सुकून है। सोचिए ज़रा, दिलों को सुकून अल्लाह की याद से है, किसी चीज़ पे नहीं, कुरान पर अमल करने की बदौलत दिलों को सुकून मिलता है। कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे दिल को सुकून मिलेगा। लेकिन अगर आप देखें ना तो अमूमन इंसान को परेशान करने वाली तीन चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इंसान की परेशानियाँ बढ़ती हैं। पहले तो ख़ुद से पूछें क्या तीन चीज़ें होंगी जो मुझे बेसकून करती हैं। तो पहली चीज़ जो हमें बेसकून करती है ना, वो दूसरों से आगे बढ़ने का जज्बा, सबकत, मैं उससे आगे, कंपटीशन कह लें आप इसको, दूसरों से आगे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ूँ, उससे अच्छा खाऊँ, उससे अच्छा पहनूँ, मेरे कपड़े उससे अच्छे हों, मेरी सवारी उससे अच्छी हो, मेरे बच्चे उसके बच्चों से ज़्यादा तालीम याफ्ता हों, स्टेटस कॉन्शियस होना, ये है पहला दुख जो हमारे दिलों को लगा हुआ है और मौत तक बेचैन रखता है, क्योंकि इसके लिए जो असबाब हैं वो तो इसके इख्तियार में ही नहीं है। हाँ, कर तो नहीं सके कब, मैं आप दुनिया में हर इंसान से अच्छे तो नहीं हो सकते, नतीजा क्या निकलेगा, मायूसी, ज़िंदगी मायूसियों में भर जाएगी। एक बहुत बड़ा तबका आज दुनिया का आपको मायूसियों में ज़िंदगी बसर करता दिखेगा, इंसान जिंदा दरगोर महसूस करता है ख़ुद को। मायूसी एक ऐसा मर्ज़ है कि ज़िंदा इंसान भी मुर्दा है, क्या करें फिर हम इन मायूसियों का इलाज क्या करें। कुरान बताता है सूरह ज़ुमर आयत 53 में, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए मुसलमानों तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। मायूसी किस बात की, सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाओ, अल्लाह की तरफ हाथ बढ़ाओ, उसके सामने दामन फैलाओ, फिर देखो अल्लाह की रहमतें कैसे बरसती हैं, अल्लाह की मदद कैसे आती है। और अल्लाह की रहमत से मायूस कौन होते हैं, काफिर, नाशुक्रे लोग। तो मैं और आप चाहते हैं कि हमें सुकून मिले, तो इसको खुरच के निकाल दें। आज के इस सेशन को सुनने के बाद एक चेकलिस्ट बनाएं, और ये जितने भी जुमले आपको अपनी ज़ात से मुतल्लिक लग रहे हैं ना, इसको लिखते जाइए। मैं अपने अंदर से दूसरों से कम्पीट करने का जज्बा निकालना चाहती हूँ। नो कॉम्पिटिशन एट ऑल, नो कंपेरिजन, नो स्टेटस। हाँ भाई, मैं दुनिया में सबसे छोटी हूँ कह लो। देखिए, कपड़ों को देखें, घर को देखें, शादियों ब्याहों को देखिए, हम ये उछल उछल के जो पाँव उठा के ऊपर जाते हैं ना, उसकी वजह यही होती है लोग क्या कहेंगे। और अगर आप नोट करें ना, तो स्टेटस कॉन्शियस का एक दूसरा नाम भी है लोगों की बातों का डर, लोग क्या कहेंगे। इसको निकालते हैं, दूसरी चीज़ पे चलते हैं। दूसरी चीज़ जो इंसान को परेशान रखती है वो है हसद। हाय, उसको ये मिला, मुझे ये नहीं मिला, उसके हालात ऐसे, मेरे ऐसे नहीं, झुलसते रहते हैं लोग, झुलसते रहते हैं, अंदर आग लगी होती है, तकलीफें, बीमारियां, परेशानियां, किसी को अच्छा खाता नहीं देख सकते, पहनता नहीं देख सकते, रहता नहीं देख सकते, किसी की बच्ची की अच्छी जगह शादी हो गई, रिश्ता हो गया, आपको अपनी बच्ची दुखती है, किसी का घर अच्छा बना, आप रोते हैं धोते हैं। इस हसद ने आज इंसानों की ज़िंदगियों को बर्बाद किया हुआ है। अल्लाह के नबी की बहुत प्यारी रिवायत है अबू दाऊद में, इय्याकुम वल हसद, हसद से बचो, फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनात, इसलिए कि हसद इस तरह नेकियों को खा जाता है, कमा ताकुलुन नारुल हतब, जिस तरह आग सूखी लकड़ियों को जलाकर ख़त्म कर देती है। तो हसद का मरीज़ बेचैन रहता है, इसका खून जलता है, क्यों, इसलिए कि अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी नहीं है, इसे क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। गोया कि आप कह लें कि हासिद अल्लाह ताला को हकीम नहीं समझता, कि अल्लाह की हिकमतें क्या हैं, करें क्या। जिसको हसद महसूस होता है दूसरे से, वो क्या करे, सबसे पहली चीज़ जिससे हसद महसूस होता है ना, उसकी खूब तारीफ़ करें, जहाँ लोगों में बैठे उसकी तारीफ़ करें, है आसान नहीं। आप तो उसकी बुराई करने में थे, आप तो उसकी लेग पुलिंग करना चाह रहे थे, कहा क्या जा रहा है कि उसकी तारीफ़ करो, बुराइयाँ बयान ना करो, भलाइयाँ करो, लेकिन इस इलाज से आपके दिल का इलाज होगा, दिल पे छुरियाँ चले लेकिन कोई बात नहीं, काम होगा। फिर दूसरा काम क्या करें कि जब भी उस शख्स से मुलाकात हो, जल्दी से उसको सलाम करें, खंदा पेशानी से मिले, वो कहता है अस्सलाम वालेकुम, आपके वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, इस तरह खंदा पेशानी से मिले। फिर एक तीसरा काम भी आप कर सकते हैं जिससे आपको हसद महसूस हो, क्या कि उसको तोहफ़ा दिया करें, छोटा सा, कोई बड़ा ज़रूरी नहीं, 1 पाउंड का तोहफ़ा, कोई फूल, कोई खाने की चीज़, कोई मोहब्बत भरी चीज़ दे दें, आप देखेंगे आपके दिल से हसद निकलेगा। फिर एक चौथा तरीका भी है, और वो क्या, कि उसके पसे पुश्त, बग़ैर उसको बताए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी भलाई के लिए और उसकी इज़्ज़त के लिए दुआएं करें, कर सकते हैं, अल्लाह करे हमारा दिल इतना खुल जाए। आप यकीन कीजिए, अगर ये सिर्फ 4 काम आप करने लग गए, आपके दिल से हसद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नबी की एक हदीस का ख़ुलासा है कि जब बंदा किसी के लिए गायबाना तौर पे दुआ करता है, तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह जो ये बंदा इसके लिए दुआ कर रहा है, तो ये सारी खैरें इसे भी दे दे। तो आपने जिसके लिए की वो तो पता नहीं कबूल होगी कि नहीं, लेकिन जब फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं तो आपकी सारी तकलीफ़ें दूर ख़त्म हो गई। एक तीसरी चीज़ जो आज हम सब में से अक्सर को बेचैन रखती है, और वो क्या है? हसद से भी बड़ा हुआ जज्बा, और वो है बुग़्ज़। खाम खा की दूसरों से खटपट, ये क्यों है, वो क्यों है, इससे मुझे नफ़रत है, मुझे ये अच्छे ही नहीं लगती, इसको तो मैं देख नहीं सकती, इसको देख के तो मुझे वहशत होती है। यानी ये ख्वाहिश कि मुझे मिले ना मिले इससे छिन जाए, अब तो मैं ये इससे भी छीन के देखूंगी। आपकी इज्जत नहीं कोई कर रहा, किसी जगह आपकी इंसल्ट हुई, आपने जाके दूसरों की भी करने की कोशिश कर दी, और इसकी वजह से आप देखते हैं कि बाज़ लोग अपनी नेमतों को इंजॉय नहीं कर पाते। ऐसे उठते बैठते ऐसे लोगों की बुराइयाँ करते हैं, लोगों की नज़रों में इनको गिराना चाहते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ कुलीग्स ऐसे होते हैं। अगर आप सिर्फ इन तीन असबाब का जायज़ा लें और इनका हल ढूंढ लें, तो आप देख सकते हैं कि आपको सुकून भरी ज़िंदगी अपनी तरह बुलाती हुई नज़र आएगी, और इन सब कामों को करने का आसान तरीका ताल्लुक़ बिल्लाह, कूमु लिल्लाही कानितीन, अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ आजिज़ बन के, कनूत के साथ। ये है सब परेशानियों का हल। हम सब चाहते हैं ना कि इस दुनिया में भी हमारी ज़िंदगी अच्छी हो। सूरह नहल में अल्लाह ताला कहते हैं फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। हम ऐसे लोगों को पाकीज़ा ज़िंदगी देते हैं, किनको? जिन्होंने आमनु के बाद आमिलु सालेहात की, मिन ज़कर न उनसा, औरत हो या मर्द हो। तो नेकियां करने से ज़िंदगी में सुकून आता है, लज़्ज़त मिलती है। जैसे प्यारों के लिए तकलीफ़ सह कर भी खुशी महसूस होती है ना, इस तरह अल्लाह के लिए तकलीफ़ें सह के भी खुशी होती है। जिनको अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है ना, उसकी एक पहचान है दुनिया में, और वो क्या कि आजमाइशों में भी खुश रहते हैं। उस वक्त उनके चेहरों पे मुस्कुराहट होती है जब लोग उनको दुख दे रहे होते हैं, उनकी जान ले रहे होते हैं, लोग उनको मारना चाह रहे हैं, ये मर भी नहीं रहे और उससे ज़्यादा खुशियाँ महसूस करते हैं। एक सहाबी को गज़वे उहद में तीर लगा, जिस्म से खून के फवारे निकले, और इनकी ज़ुबान पे क्या था, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। लेकिन ये बात उस काफिर को समझ में नहीं आई कि इसकी तो औलाद यतीम हो रही है, इसकी तो बीवी बेवा हो रही है, जिस्म से खून के फवारे फूट रहे हैं, ज़िंदगी की कीमती मताई से छीनी जा रही है, और ये कह रहा है कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। इसका तो सब कुछ लुट रहा है, ये खुशियाँ मना रहा है, ये कामयाब है, ये कौन सी कामयाबी है? तो कहा तुम्हें ये समझ नहीं आएगी जब तक तुम अल्लाह की मोहब्बत का दम नहीं भरोगे, ईमान नहीं लाओगे, ये बात समझ नहीं आएगी। तकलीफ़ों के अंदर क्या लज्जत है, आजमाइशों के क्या मज़े हैं, ये समझ में नहीं आएगा। आज भी लोग कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता, ये कैसे हो सकता है, आज के दौर में ये क्या होगा, कैसे होगा, होगा कैसे? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह की याद से होगा, कुरान पर अमल करने से होगा, दीन की खिदमत करने से होगा। आप अपने ऊपर लेके सोचिए, दिन के कितने घंटे आप स्कूल में गुजारते हैं, घर जाकर भी आपका दिल इसी चीज़ में पड़ा रहता है ना। इसी तरह आप फील करेंगे कि जितना आप अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ जोड़ते जाएंगे, उतना ही आपको इसकी लज़्ज़त महसूस होगी, और आप देखेंगे कि दिन ब दिन आप अल्लाह के करीब ही होते जा रहे हैं। और दुआ करें कि हम अल्लाह के करीब हो जाएं। जितना ज़्यादा अल्लाह ताला का कुर्ब मिलेगा, उतना आप खुश रहेंगे, आपको मज़ा आएगा। बस आप देखिए कि जैसे किसी का एक को प्यारा दोस्त है ना, उसको साल बाद मिलने आए, फिर कैसे मिलता है? बहुत ज़ोर से मिलता है। कोई उससे भी पहले दूर से आए, 2 साल बाद मिले, और भी मिलेगा। यानी जितनी देर से कोई मिलता है, उतना हमें अच्छा लगता है। इसी तरह अल्लाह के नेक बंदों पे जब तकलीफ़ें आती हैं ना, तो कहते हैं ये अल्लाह के प्यार का अंदाज़ है, इसमें भी लज्जत और इत्मीनान बढ़ता है। आपने देखा कि ईमान की लज्जत क्या होती है, कि उसके बाद हर वक्त अल्लाह ताला का ख्याल आता है, और उस मोहब्बत का भी मज़ा है। एक ईमान वाले पर जब भी कोई मुश्किल आती है ना, तो वो कहता है ये मुझे अल्लाह ने याद किया है, और उस मुश्किल में घबराने की बजाय वो खुशियाँ मनाता है। बहुत सारे इसबाब हो सकते हैं गमों के, दुखों के, मुसीबतों के, ये तो ज़ाहरी इसबाब है ना, लेकिन अगर पीछे से देखें तो अल्लाह ताला हमारे साथ बेहतरी का इरादा करते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला चाहते हैं कि हम अपने गुनाहों से पाक हो जाएं। अल्लाह ताला हमारे दर्जे बुलंद करना चाहते हैं। जब भी कभी कोई तकलीफ़ हो, दिल बेचैन हो, परेशान हो, तो क्या करें, सोचें क्या वजह है, आज ये तकलीफ़ मुझ पे क्यों आई, आज मेरे बच्चे ने मेरे साथ ऊंची आवाज़ से बात क्यों की, आज मेरे शौहर का मूड मुझसे ख़राब क्यों हुआ। इस तरह आप सोचते जाएंगे ना, तो आप उन सारी चीज़ों के पीछे अल्लाह को देखेंगे। एक होता है वक्ती बेचैनी, ये तो इंसान की फितरत है, ये तो नहीं हो सकता कि आप धूप में खड़े हो तो आपके पाँव ना चलें, ये तो होगा, लेकिन दिल खुश रहेगा आपके, मैं नेक हूँ, मेरा दिल फिर भी दुखे, मेरे शौहर क्यों नहीं नेक हो रहे जब मैं नेक हो गई हूँ। सब्र कीजिए, आपने भी वक्त लिया है, उनको भी वक्त दीजिए। हम झटपट मामले पे आ जाते हैं, हमारे यहाँ नेकियों का एक मियार क्या, बस नमाज़ पढ़ लो, बस किसी को तकलीफ़ ना दो। नेकी फिर क्या है, नमाज़ें पढ़ो, नफिल पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, ये करो, लेकिन असल नेकी क्या है, अल्लाह की नाफरमानी से बचो, उसके हुक्मों को ना तोड़ो। अल्लाह ताला सूरह यूनुस आयत 63 में क्या कहते हैं, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, यानी अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली कौन होते हैं, जो ईमान लाते हैं और फिर गुनाहों से परहेज़ करते हैं। तो हम ये देखें कि हमारी ज़िंदगी में गुनाह कितने हैं। ईमान लाने के बाद ईमान वाला गुनाह नहीं कर सकता कि चलो सारा सारी रात गुनाह करते रहो और सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के सो जाएंगे, चलो दिन भर रोज़ाना रखो, रातों को लंबी चौड़ी तस्बीहें कर लो, नहीं। अल्लाह कहता है थोड़ी नेकियां करो, थोड़ी बातें करो, हाँ गुनाह छोड़ दो। गुनाहों से दिलों को बेसकूनी मिलती है। जब कभी आप बेचैन हो ना, तो सोचे कि इससे पीछे मैंने कोई गुनाह किया, आप देखेंगे कि आपको खुद ब खुद अपना कोई गुनाह समझ आएगा। सूरत क़यामत में अल्लाह ताला कहते हैं बलिल इंसान वला नफ्सिही बसीरा, बल्कि इंसान तो अपने नफ्स को खुद जानता है, वलो अल्का माजीरा, चाहे दूसरों के सामने कितने उजर पेश करे। तो इंशाल्लाह आज हमने जो बात सीखी वो क्या है, दिल के सुकून के लिए अल्लाह से प्यार करना है, गुनाहों को छोड़ना है। नेकी का असल मेयार ये नहीं कि इबादत की कसरत की जाए, बल्कि नेकी का मेयार तकवा है, गुनाहों से बचना है, नाफरमानियों से बचना है। जितना कोई गुनाहों से बचता जाएगा उतना तकवा बढ़ता जाएगा, फिर एक अजीब दौलत मिलेगी, दिल खुश होगा। आप देखिए कि अगर आप अपने घर में सामने की दीवार पर एक आईना लगा दें तो क्या होगा, हर आने वाले को दरवाजे से अंदर आते ही अपना रुख भी दिखेगा, और अगर आप उस आईने को इस रुख पे लगाएं कि अंदर से आपको भी दिखे, तो आपको भी पता चलेगा कि कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, जैसे आजकल घरों में ऐसे होता है। इसी तरह जिस बंदे के दिल में तकवा आ जाता है ना, अल्लाह ताला उसके सीने में एक आईना लगा देते हैं, वो इस आईने में देख लेते हैं कि ये अच्छाई है, ये बुराई है, ये अच्छे काम है, ये बुरे हैं। यही है जिसको अल्लाह ताला फुरकान कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बड़ी प्यारी बात कही, और आपने फरमाया कि इत्तकु फिरासतुल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से बचो, यानी मोमिन की इंटेलिजेंसी, अक्लमंदी से बचो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देख लेता है। इसी तरह सूरह अनफाल आयत 29 में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, अगर तुम गुनाह छोड़ दोगे मैं तुम्हें एक आईना दूंगा, फुरकान की सूरत में, तो कुरान भी एक आईना है, हक और बातिल अलग हो जाते हैं। ग़ज़वे बदर को अल्लाह ताला ने यौमुल फुरकान कहा सूरह अनफाल आयत 41 में, यौमुल फुरकान यौमुल तकल जमान, क्यों, इसलिए कि उस दिन हक और बातिल की तमीज़ हो गई थी, लोगों को पहली जंग में पता चल गया था कि इस्लाम हक है और कुफर बातिल है, और इसके बाद फिर बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए थे। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें सुकून कल्ब दे। हर वक्त जो सोचते हैं किसकी मानूँ, किसकी जानूँ, लोग ही नहीं अच्छे मिलते, लेकिन असल बात क्या है कि हमारे दिल के आईने मैले हो चुके हैं, पहचान ख़त्म हो गई, हमें अच्छे लोग मिलते ही नहीं, नज़र नहीं आते। जब अच्छे लोग किसी अच्छे काम पर बुलाते हैं तो हम गिला करते हैं, गुस्सा करते हैं, कोई गलत चीज़ पर बुलाए खुशी से जाते हैं, फिल्मों, ड्रामों, अफसानों में हमारा दिल ज़्यादा लगता है, दीन की बातों में दिल नहीं लगता। तो जितना अपनी ज़िंदगी में दीन दीनदारों को जमा करेंगे, उनके साथ मिलके अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे, अमल करेंगे, उतना आपको मुझे दिल का सुकून मिलेगा। अल्लाह ताला इस वक्त हमसे ये चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी का रुख बदलें, अल्लाह से ताल्लुक़ बनाएं। दुनिया में कोई भी हालात आए मेरे ऊपर, मैंने अपने दिल को अल्लाह से खुश रखना है, डिप्रेशन नहीं, तकलीफ़ नहीं। और सबसे खूबसूरत तरीका जिस पे बात आज की पूरी करूँगी, اللہ سے تعلق بنانا ہے نا تو پہلی فرصت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، دل کی ندامت کے ساتھ، اللہ میں نے آپ کو بہت ناراض کیا، اللہ میں نے بہت گناہ کیے، میں اپنی گناہ گاروں، پھر آپ مجھے قرآن پہ لے آئے، پھر مجھے کورس کرنے والا بنایا، پھر مجھے دین کی خدمت پہ چنا. آپ دیکھیں گے، روئیں گے نا آپ جب، تو آپ کو لگے گا آپ کے دل پر ایک ٹھنڈی برف کی سل لگ گئی. سکون، اطمینان، خوشی اور توبہ سے تعلق جڑتا ہے. اللہ ناراض ہو گیا تھا نا، تو آپ توبہ کریں، اللہ اس توبہ کے بدلے میں آپ کی طرف واپس آ رہا ہے. اس کو چھوڑتے جائیں، آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جو آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھی تھی، سورۃ توبہ 24، کہ اگر تمہیں تمہارے باپ، بھائی، بیٹے، شوہر، کنبے، قبیلے، تمہارے مال، تمہاری تجارتیں اللہ اور اس کے حکم سے پیاری ہیں تو تم فکر کرو. تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سامان راحت تو ہیں، لیکن اصل راحت نہیں ہے. ہمارے دلوں کی غذا اللہ کی یاد ہے، اللہ کی چاہت، اللہ کو پانا ہے. بے جان چیزوں سے ہم خوش نہیں کر سکتے اس دل کو. احب الیکم من اللہ، بس اللہ کہتے خوب ہو، احب نہ ہو، ان چیزوں سے پیار کرو، ذمہ داریوں کو پورا کرو، لیکن اللہ کے معاملے میں ان کی رضا کو مول لے کے اس کو ناراض کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. ورنہ پھر یاد رکھیے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور اللہ کی پکڑ کا پہلا اظہار دل کی تنگی ہے، بے سکونی. سورۃ طہٰ 124 میں آتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، جس نے میری یاد سے، میرے ذکر سے منہ پھیرا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، اور قیامت کے دن اس کو تنہا کر دوں گا. قیامت کے دن وہ اندھا اٹھے گا. تو آج انسان تلخ زندگیاں بسر کریں کیونکہ اعراض ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بہترین حال میں رکھے. ایک بزرگ تھے، کسی نے ان سے پوچھا، سناؤ بھائی کیسی گزر رہی ہے، ذوالنون ان کا نام آتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ سناؤ بھائی کیا حالات ہے، جیسے ہم بھی پوچھتے ہیں نا، سنائیں جی آج کل کیا چل رہے ہیں. تو کہنے لگے، کیا پوچھتے ہو بھائی، ساری دنیا میں ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں. پوچھنے والے نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہا بھائی، دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے نا. اس نے کہا کہ ہاں، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں فنا کر دی ہے، بتا ہم اللہ کی رضا پہ خوش ہیں. تو دل کا سکون اللہ کی چاہت میں، سکون کا راستہ اپنی چاہتوں کو، اپنی پسند کو اللہ کی چاہت، اللہ کی پسند میں فنا کر دیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین سکون والی زندگی عطا کرے. اسباب کی بجائے اصل کو اختیار کریں. جب کوئی مشکل آئے تو پوچھیں، اس میں میرے لیے کیا ہے، کیا کر سکتی ہوں، کدھر بھاگوں. چیزوں کو نہ ڈھونڈیں، چیزیں دینے والے کی طرف بھاگے. اب دیکھیں، جب کوئی تیر مارتا ہے تو کوئی بندہ کمان کی طرف نہیں دوڑتا، بلکہ تیر والے کی طرف دوڑتا ہے نا، کیونکہ کمان تو ایک واسطہ ہوتی ہے. اسی طرح جو حالات آتے ہیں نا، یہ ایک واسطہ، ایک وسیلہ، اصل پیچھے اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا پہ رہنے والا بنائے، انشاءاللہ ان ساری پریشانیوں میں، اور خاص طور پہ دین کے راستے میں اگر آتی ہیں، تو اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو سکون دیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.